नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी बुद्धों का संदेश। सब पापस्स अकरणम कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। सभी पाप कर्मों को न करना, पुण्य कर्मों की संपदा संचित करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। खंती परमं तपोति तिक्खा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पब्बज तो परूप घाती न समणो होति परम विहेठ यंतो। सहनशीलता तथा क्षमाशीलता परम तप हैं। बुद्ध जन निर्वाण को सर्वोच्च बतलाते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रपंचित नहीं होता और दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं हो सकता। अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्षे च संवरो मत्तं युता च भत्तस्मिं पंतंच सेनासनम अधिचित्ते च आयोगो एतम बुद्धान शासनम। निंदा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष अर्थात भिक्षु आचार संहिता द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, अपने आहार की मात्रा का जानकार होना, एकांत में सोना बैठना और चित्त को एकाग्र करने में प्रयत्न जुटाना, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। धम्मपद गाथाएं 183 से 185। ये गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, कि अहिंसा सच्चे तपस्वी की विशेषता है तथा हमें एक शुद्ध एवं उदात्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये गाथाएं भगवान बुद्ध द्वारा आदरणीय आनंद को सुनाई गई थी, जब उन्होंने पूछा था कि पिछले बुद्ध उपोषत दिवसों को अर्थात चंद्रमा के चार चरणों से संबंधित दिवसों को, जब विशेष प्रयास जैसे अतिरिक्त शिक्षा पदों का पालन करना होता है, कैसे मनाते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया कि सभी बुद्धों ने उपोषत दिवसों के संदर्भ में ये तीन गाथाएं सुनाई थी। हमने देखा कि हम अत्यंत भाग्यशाली हैं जो बुद्ध की इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाने में सक्षम हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य लोक में जन्म मिला है। अस्तित्व के सभी 31 लोकों में से मनुष्य लोक सभी अनुबंधित अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता को तथा सभी अनुबंधित अस्तित्वों में दुख अथवा कुंठा को सराहने के लिए सर्वोत्तम है। यदि हमने अधोलोकों में जन्म लिया होता तो हमारे भीतर इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम तथ्यों को समझ सकें, अथवा हम इतना अधिक तथा इतनी निरंतरता से दुख भोगते रहते कि कुशल विचार तथा कुशल कर्म करना असंभव होता। यदि हम उच्च लोकों में जन्मे होते तो या तो हम वहां सुखों में इतने व्यस्त होते कि यह विश्वास नहीं होता कि दुख भी हो सकता है, अथवा हम इतनी लंबी आयु तक जीते कि मृत्यु के तथ्य से विमुख हो जाते, तथा कुछ ब्रह्मलोकों में तो सोचना भी असंभव हो जाएगा। पारमिताएं, पाली में पारमी। हमने यह भी देखा कि आवश्यक पारमी विकसित करने के लिए एक असाधारण लंबी अवधि अर्थात अविश्वसनीय संख्या के जन्मों के जीवन लग जाते हैं। ये पारमी 3 स्तरों पर विकसित की जा सकती है। प्रथम सामान्य स्तर की, जिससे सुखद लोकों में पुनर्जन्म हो सकेगा। अगले स्तर पर इनका और अधिक विकास किया जाता है, जिससे हम किसी बुद्ध की शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर पा सकते हैं तथा उसके परिणाम स्वरूप सच्चा सुख अर्थात अरहत्व प्राप्त कर सकते हैं। अथवा हम बुद्ध के 80 प्रमुख शिष्यों में से एक या उनके 2 सर्वप्रथम शिष्यों में से एक बन सकते हैं। पारमी पूरा करने में उच्चतम स्तर स्वयं जागृत होने की ओर जाता है, अर्थात प्रत्येक बुद्ध यानी कि ऐसे बुद्ध होना जो दूसरों को प्रशिक्षित नहीं करते, या 3 प्रकार के प्रशिक्षक बुद्धों में से एक होना। जैसा कि हमने कहा, ये पारमिताएं या पारमी 10 हैं। उदारता या दान, नैतिकता या शील पाली में शील, त्याग अर्थात निष्कामता निष्क्रमण या नैष्क्रम्य पाली में नेखाम, प्रज्ञा पाली में पहिया, प्रयास या दृढ़ता अर्थात वीर्य पाली में वीर्य, धैर्य या सहिष्णुता या क्षांति पाली में खांति, सत्यवादिता या सत्य पाली में सच, दृढ़ संकल्प या अधिष्ठान पाली में अधिष्ठान, मैत्री पाली में मेत्ता और समभाव या उपेक्षा पाली में उपेक्षा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम जो यहाँ कर रहे हैं इनमें से अधिकांश का सीधा संबंध है। हम शिक्षा पदों के पालन के द्वारा नैतिकता का अभ्यास कर रहे हैं तथा एकाग्रता एवं अंतर्दृष्टि विकसित करने में हमें वीर्य शांति अधिष्ठान तथा उपेक्षा का अत्यधिक उपयोग करना पड़ा है। जब हम अपने पुण्य सभी प्राणियों में बांटते हैं तो हम मेत्ता तथा दान का अभ्यास करते हैं। जीवन में हमारे सभी कुशल कार्य इन पारमिताओं में से 2 या अधिक के संयोजन से होते हैं। जितना ही अधिक हम उन्हें विकसित करेंगे उतना ही बेहतर हमारा ध्यान लगेगा। जितना ही अच्छा हमारा ध्यान लगेगा उतना ही बेहतर हम इन पारमिताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। यदि हमारा ध्यान केंद्रित हो तो हम लोभ क्रोध और अज्ञान से संलग्न पीड़ा को और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। जब हम क्रोध में चीख रहे होते हैं तो उस क्रोध के साथ अप्रिय संवेदनाएं होती हैं। अब हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे और हम इस प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहेंगे तथा ऐसे दुखदायी विचारों कार्यों एवं व्यवहार से विरत होकर हम ऐसे विचार शब्द एवं कार्य विकसित करने का प्रयास करेंगे जिनसे हमें तथा दूसरों को भी सुख मिले। क्रमिक शिक्षण। यद्यपि हम मुख्य रूप से सांसारिक सुखों में रुचि रखते हों तो भी हम इन पारमिताओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहेंगे। जब भगवान बुद्ध कोई प्रवचन देते थे तो वह एक क्रमिक शिक्षण होता था। वे पारमिताओं में से सर्वप्रथम पारमिता दान से प्रारंभ करते थे, क्योंकि हम नैतिकता के क्षेत्र में कुशल कार्यों को दान शब्द में निचोड़ सकते हैं तथा यह दान या उदारता ही है जो उच्चतर लोकों में पुनर्जन्म दिलाती है। आपने इस तरह की अनेक कथाएं सुनी हैं जिनमें पुक्कुसाती तथा बाह्य दारुचीरी जैसे व्यक्तियों के उदाहरण की चर्चा है। जब ये दोनों बुद्ध के सान्निध्य में आए तो भिक्षु बनने के लिए 8 आवश्यक वस्तुएं अपने लिए नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में चीवर भिक्षा पात्र इत्यादि भिक्षुओं की 8 आवश्यक वस्तुओं का दान नहीं दिया था, अथवा उन्होंने साथी भिक्षुओं की सहायता नहीं की थी या किसी प्रत्येक बुद्ध को क्षति पहुंचाई थी, अतः वे भिक्षु नहीं बन सके। इसके विपरीत वे दोनों एक पागल गाय द्वारा मारे गए। कहा जाता है कि एक ही गाय ने इन दोनों आर्यों को मार डाला। इस प्रकार बुद्ध लोगों की उदारता या दान में स्थापना के साथ प्रारंभ करते थे। इस आधारशिला के बिना आगे बढ़ना असंभव होगा। इसके बाद वे अपने दर्शकों को नैतिकता के विषय में सिखाते थे, क्योंकि जब हम उदार होते हैं तो मन अधिक लचीला हो जाता है। हम गलत कार्यों को करने से बचने में तथा सही कार्यों के संवर्धन में ही बुद्धिमत्ता समझने में अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। तब बुद्ध अपने श्रोताओं को चार ब्रह्म विहारों में स्थापित करते थे। अंत में यदि वे यह देखते थे कि सामर्थ्य विद्यमान है तो वे एकाग्रता तथा अंतर्दृष्टि सिखाते थे। इसी कारण बौद्ध देशों में अपने शिष्यों को भिक्षु दान शील एवं भावना सिखाते हैं। शील द्वारा लंबी आयु प्राप्त होगी तथा दान से भौतिक लाभ। अनुरुद्ध, विशाखा, अनाथ पिंडिक तथा कई अन्य लोगों के उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि किस प्रकार दान ने उनके भव चक्र में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। वेलुद्वार के ग्रामीणों को प्रवचन। किस प्रकार भगवान अपना शिक्षण अपने श्रोताओं के अनुकूल दिया करते थे, इसका एक दृष्टांत वेलुद्वार के ग्रामीणों को बुद्ध द्वारा दिए गए प्रवचन में मिलता है। इसे धम्म के मार्ग पर अन्य लोगों की अपने से तुलना करने का प्रवचन कहा जा सकता है। ग्रामीणों ने बुद्ध को बताया कि इस जीवन में वे अनेक संतानें तथा सुखद वस्तुएं जैसे इत्र, पुष्प, रजत एवं स्वर्ण चाहते थे तथा मृत्यु के पश्चात देवलोक में पुनर्जन्म, यह सब वे कैसे प्राप्त करें। बुद्ध ने उनसे यह नहीं कहा कि उन्हें ऐसे क्षणिक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्हें पता था कि मनुष्य अपने स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तथा किसी व्यक्ति से यह कहना निरर्थक है कि उसे पूरी तरह उदासीन होकर काम करना चाहिए। अरहत बनने के पहले यह असंभव है। हमारे कार्यों में सदैव कुछ न कुछ अहम भाव लगा ही रहेगा। अतः उन्होंने उन्हें सिखाया कि स्वयं से दूसरों की तुलना कैसे करनी चाहिए। उन्होंने उनसे कहा कि वे निम्नलिखित तरीके से चिंतन मनन करें। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे सुख अच्छा लगता है तथा दुख एवं पीड़ा नापसंद है। यदि कोई मेरी हत्या कर दे तो यह सुखद एवं आनंदमय नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मैं किसी की हत्या करता हूँ तो वह उसके लिए सुखद एवं आनंदमय नहीं होगा। जो स्थिति मेरे लिए सुखद एवं आनंदमय नहीं है वह दूसरों के लिए भी सुखद एवं आनंदमय नहीं है। अतः वह स्थिति जो मेरे लिए सुखद एवं आनंदमय नहीं है उसे मैं दूसरों पर कैसे थोपूं। उसी तरह व्यक्ति को चोरी, यौन दुर्व्यवहार, झूठ जो हमारा सौभाग्य नष्ट कर सकता है, मित्रों के बीच कलह, कठोर शब्दों, मूर्खतापूर्ण एवं फालतू बातों के विषय में चिंतन मनन करना चाहिए, यह समझ कर कि ये सभी अप्रिय करते हैं। व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने से बचेगा। व्यक्ति दूसरों को इनसे बचने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा व्यक्ति ऐसे अनैतिक कार्यों से परहेज की प्रशंसा करेगा। अंत में व्यक्ति बुद्ध, धम्म एवं संघ में उनकी गुणवत्ताओं को समझते हुए श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास विकसित करेगा। हम पहले ही इन गुणों को बता चुके हैं तथा श्रद्धा के गहनतर स्तर के अर्थ का स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। बुद्ध ने वेलुद्वार के लोगों को अपना प्रवचन यह कहकर समाप्त किया कि नैतिकता के माध्यम से वे समाधि प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे जो उन्हें सोतापन्न पद की ओर ले जाएगी तथा जो जागृति के पहले चरण में स्थापित हो जाता है उसका अधोगति में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो यह प्रवचन उन लोगों के लिए होगा जो पारमिताओं को दूसरे स्तर पर विकसित कर रहे हों। बुद्ध स्वयं ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें सर्वोच्च स्तर तक विकसित किया था। पाली ग्रंथों में जातक नामक एक संग्रह है जिसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की जब वे बोधिसत्व थे लगभग 550 कहानियां हैं तथा उनको कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ी थी उसे सराहने में वे हमारी सहायता करती हैं। निसंदेह वे उनके अनेक जन्मों में से केवल कुछ ही जन्मों के विषय में हैं। वैशांतर की कथा। बौद्ध देशों में इन जातक कहानियों में से बुद्ध बनने के पहले की इस मनुष्य लोक में उनके पूर्व जन्म की कथा सबसे अच्छी जानी जाती है। उस जीवन में उनका नाम वैशांतर था और उस जीवन काल में उन्होंने दानशीलता की पारमी भरपूर विकसित की। वे एक राजकुमार थे किंतु उनकी उदारता इतनी थी कि यथासंभव अपना सब कुछ जो दान कर सकते थे उसे दान कर दिया। राजसी हाथी जिसमें यह शक्ति थी कि वह जिस देश में रहे उसमें अच्छी वर्षा हो उसे भी उन्होंने दे दिया। इस कारण वे अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनके साथ जाने पर जोर दिया और चूंकि वे किसी की यातना अस्वीकार नहीं कर सकते थे उन्होंने अंत में अपने बच्चों तथा पत्नी को भी दे दिया। देवताओं के राजा इंद्र या शक, पाली में शक, ने एक मनुष्य के रूप में स्वयं को प्रच्छन्न कर उनकी पत्नी को मान लिया क्योंकि वे बोधिसत्व की पारमिताओं के विकास में सहायता करना चाहते थे तथा उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी पत्नी को कोई क्षति न पहुंचे। बच्चे एक ब्राह्मण द्वारा मांग लिए गए जिसे अपनी पत्नी के लिए सेवकों की आवश्यकता थी किंतु वैशांतर के पिता अर्थात राजा ने ब्राह्मण को उनके बदले धन देकर बच्चों को वापस ले लिया। तो हो सकता है कि हम उस उच्च स्तर तक पारमिताओं को विकसित करने के लिए काम न कर रहे हों, अतः हमें इस बात के लिए बाध्य नहीं महसूस करना चाहिए कि हम अपनी सभी वस्तुओं को तथा अपने सभी निकट एवं प्रिय लोगों को दान में दे दें, किंतु हम और अधिक सहज उदारता का प्रयास कर सकते हैं। यह स्मरण करते हुए कि बुद्ध ने गृहस्थों को बुद्धिमानी के साथ अपने धन का उपयोग करने की सलाह दी थी, न केवल अपने परिवार के बाहर के लोगों को देकर अपितु उत्तरदायी पति पत्नी पुत्र पुत्री पिता तथा माता बनकर। बुद्ध का अंतिम जीवन। अपने अंतिम जीवन के पूर्व में बोधिसत्व तुषित स्वर्गलोक में सेतकेतु देवता थे। वहां वे सभी समुचित परिस्थितियों के एकत्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। जब मनुष्य लोक में उनके कार्य के लिए अनुकूल सही परिस्थितियां प्रबल होती हैं तो वे यह देखते हैं कि विश्व के किस भाग में कौन उनके लिए सही माता पिता होंगे तथा वे तब माँ की कोख में प्रवेश करते हैं। गौतम बुद्ध के लिए माता पिता भारत में आधुनिक नेपाल के निकट कपिलवस्तु में महारानी माया देवी तथा महाराज शुद्धोधन थे। उनके जन्म के समय 32 चमत्कार हुए क्योंकि ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। जब ऐसा हुआ तो उस समय महाराज शुद्धोधन के राजदरबार के एक तपस्वी काल देवल अर्थात असित तवतिंस देवलोक के देवताओं से वार्तालाप कर रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि महाराज को एक पुत्र हुआ है तथा विश्व में जश्न मनाया जा रहा है तो वे राजमहल गए एवं शिशु को उनके पास लाने के लिए कहा। जैसे ही महाराजा शिशु को अपने गुरु के समक्ष रखने वाले थे कि शिशु ने उछलकर अपने पैर तपस्वी के सिर पर रख दिया। तपस्वी तत्काल समझ गए कि शिशु भावी बुद्ध थे। इस विचार से वे मुस्कुराए। फिर अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा उन्होंने देखा कि वे भावी बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रह सकेंगे और उनका पुनर्जन्म और रूपावचर ब्रह्मलोक में होगा। उन लोकों का रूपावचर लोकों से किसी भी प्रकार का संपर्क संभव नहीं है और इसलिए वे रो पड़े। 5 दिन बाद शिशु का नामकरण सिद्धार्थ हुआ तथा राज ज्योतिषी ने उनके शरीर के चिन्हों को पढ़कर यह भविष्यवाणी की कि वे या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक बुद्ध। तथापि एक अन्य ज्योतिषी ने यह इंगित करने के लिए कि केवल एक ही संभावना है और वह है उनके बुद्ध बनने की, केवल एक उंगली ही उठाई और उनका नाम कौंडिन्य था। महाराज चाहते थे कि उनका पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट हो तथा पूरे संसार पर राज्य करे, अतः उन्होंने उसे विलासिता का जीवन प्रदान किया। वर्ष के 3 मौसमों के अनुरूप 3 महल बनाए गए। वह सब किया गया जिससे राजकुमार वासनाओं में ओतप्रोत हो जाए। महाराज ने आदेश दिया कि राजकुमार का कोई भी सेवक या सहयोगी कभी भी वृद्धावस्था, रुग्णता तथा मृत्यु के विषय में एक शब्द भी न बोले। वे अपना व्यवहार ऐसा रखें जिससे यह लगे कि संसार में कोई अप्रिय बात होती ही नहीं। परिचारक एवं सेवक जिनमें रंचमात्र भी वृद्ध, कमजोर या बीमार होने का संकेत मिलता था उन्हें बदल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त नृत्य, संगीत तथा आनंदमय समारोह होते रहते थे। तथापि समय के साथ एक रास्ता के कारण कामुक परिवेश की पकड़ शनैः शनैः राजकुमार सिद्धार्थ के मन पर ढीली पड़ने लगी। अपने असंख्य जन्मों में बुद्धत्व के महान लक्ष्य के लिए संरक्षित पुण्य की सारी मानसिक ऊर्जा स्वचालित रूप से जागी। समय समय पर जब वासना के संसार का नियंत्रण उनके मानस पर से ढीला पड़ता तो उनके आंतरिक व्यक्तित्व की उदीरणा होती तथा उनका मानस समाधि की शक्ति के साथ शांत एवं पवित्र हो जाता, जैसे कि उनके शैशव में उन्हें तपस्वी कर्णदेवल के सिर के ऊपर उठाया था। महान त्याग। साहस की परीक्षा प्रारंभ हुई। वे जानना चाहते थे कि राजमहल की दीवारों के बाहर क्या है। अपनी पहली बाहर की यात्रा के लिए उन्होंने राजसी उपवन में जाने का निर्णय लिया। तो यथाभूत प्रकृति न कि मानव रचित को देखने का यह उनका पहला प्रयास था। मार्ग में कोई भी अप्रिय दृश्य न हो इसके लिए महाराज द्वारा ली गई सभी सावधानियों के उपरांत भी उपवन जाते समय सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। इसके बाद उन्होंने किसी घातक रोग से ग्रसित एक रोगी को देखा। फिर उन्हें एक शव का सामना करना पड़ा। अंत में उन्होंने एक भिक्षु को देखा। अतः वे सोचने लगे उनका मानसिक दृष्टिकोण बदल गया था। उनका मानस दोष मुक्त हो गया तथा संस्कार लोक में अर्थात मानसिक शक्तियों की भूमि में संरक्षित उनके स्वयं के पुण्य की शक्तियों के साथ गूंजने लगा। तब तक उनका चित्त निवरणों से मुक्त, प्रशांत, शुद्ध एवं सुदृढ़ हो गया था। उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकता को देख लिया था तथा भिक्षु के चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्हें एक संकेत मिला कि इन सभी दुखों का कोई विकल्प भी हो सकता है। उनके दृष्टिकोण में यह परिवर्तन उस रात को हुआ जब उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु मन को डावाडोल करने वाली किसी भी बात से वे प्रतिरक्षित थे। उनके भीतर के अधिष्ठान के सद्गुण बाहर उभर कर आए जिसके माध्यम से वे दृढ़ संकल्प के लिए सक्षम हुए तथा उन्होंने जन्म, जरा, दुख तथा मृत्यु से बचने के लिए मार्ग का अन्वेषण करने का अपना मन बना लिया। यह पवित्र दृढ़ संकल्प उन्होंने आधी रात को लिया। उन्होंने अपने परिचर छन्ना से अपने घोड़े खंडिक को तैयार करने के लिए कहा। वे अपने पुत्र की एक झलक देखने के लिए गए। उन्होंने पुत्र का नाम राहुल अर्थात बाधक रखा था, क्योंकि वे समझते थे कि पुत्र उनके राजकुमार के रूप में बने रहने के लिए एक प्रलोभन होगा। जब वे अपनी पत्नी के कक्ष में गए तो देखा कि उनकी पत्नी की बाहु से शिशु छिपा है, किंतु वे फिर बाहर आ गए यह सोचते हुए कि यदि वे अपने पुत्र को देखने के लिए अपनी पत्नी को छूते हैं तो वह जाग सकती है और उनसे बात करके उनका संकल्प विचलित कर सकती है। अतः उन्होंने पारिवारिक जीवन तथा संसार से सभी संबंध तोड़ दिए और एक महान त्याग किया। वे नगर से बाहर अनोमा नदी पर गए। उन्होंने वह नदी पार की यह ठान कर कि जब तक उनको अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त होता वे वापस नहीं लौटेंगे। वे अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर तपस्वी के रूप में रहने लगे तथा उनका पहला कदम अपने आप को दो प्रसिद्ध ब्राह्मण शिक्षकों आलार एवं उद्दक के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में प्रस्तुत करना था। आलार आत्मा में विश्वास पर जोर देते थे तथा यह सिखाते थे कि भौतिक सीमाओं से मुक्त होने पर ही आत्मा पूरी तरह से मुक्त होती है। इससे बोधिसत्व संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद वे उद्दक के यहाँ गए जो कर्म के परिणामों पर तथा आत्मा के आवागमन पर अधिक जोर देते थे। उनमें से कोई भी आत्मा की अवधारणा से परे नहीं जा सका तथा बोधिसत्व को लगा कि जानने के लिए कुछ और भी है। जब उनके दोनों गुरुओं में से प्रत्येक ने अपने पद के स्तर पर उन्हें भी रखने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया तथा वे स्वयं ही मुक्ति का मार्ग ढूंढ निकालने निकल पड़े। अब तक वे रूपावचर एवं अरूपावचर के 8 ध्यानों समापत्ति में पारंगत हो गए थे तथा अलौकिक शक्तियों में निपुण भी, जिसके कारण वे अतीत और भविष्य के कई विश्व चक्रों की घटनाओं को जानने में सक्षम भी हो गए। किंतु यह सब सांसारिक क्षेत्र के अंतर्गत ही था तथा इनसे बोधिसत्व संतुष्ट नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा जन्म दुख और मृत्यु के इस भव चक्र से बाहर निकलने की थी। तपस्या। बोधिसत्व के साथ 5 तपस्वी भी जुड़ गए और उनमें से एक कौंडिन्य थे जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ जागृति प्राप्त करेंगे। 6 वर्षों तक बोधिसत्व ने दुख की समाप्ति के अन्वेषण के लिए अनेक तपस्याओं का प्रयास किया। उस समूची अवधि में 5 तपस्वियों ने उनकी अच्छी तरह सेवा की। उन्होंने उपवास किया तथा विभिन्न अनुशासनों के साथ घोर तपस्या की जब तक वे दुबले होकर लगभग एक कंकाल मात्र नहीं हो गए। वास्तव में एक दिन वे थकावट के कारण मूर्छित होकर नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तब उन्हें एहसास हुआ कि चरम तपस्या सही मार्ग नहीं है। उन्होंने अपनी पद्धति बदल दी और वे एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करने लगे तथा उन्होंने पाया कि अब उनकी जागृति का पथ स्पष्ट हो गया है। 5 तपस्वियों ने, जो ऐसा मानते थे कि कठोर तपस्या ही श्रेयस्कर है, यह निर्णय लिया कि अब सिद्धार्थ ने गंभीरता से काम करना छोड़ दिया है। अतः वे निराश होकर उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जागृति। 2500 से अधिक वर्षों पूर्व वैशाख पूर्णिमा बर्मी पंचांग में कासों की पूर्णिमा की संध्या को बोधिसत्व सिद्धार्थ उरुवेला वन में निरंजरा नदी के तट पर वर्तमान बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे पर्यंक बद्ध अर्थात पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने कठोरतम संकल्प लिया कि वे उस आसन से किसी भी कारणवश तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें जागृति का सत्य बुद्धत्व न प्राप्त हो जाए, भले ही इस प्रयास में उनका जीवन ही न चला जाए। सत्य के अन्वेषण के लिए अत्यंत आवश्यक चित्त एकाग्रता सुरक्षित करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी सारी मानसिक शक्तियों को एकत्र करने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि पहले की अपेक्षा इस अवसर पर मन को संतुलित करना उतना सरल नहीं था। उनके चारों ओर निम्न लोकों एवं ऊर्ध्वलोकों की शक्तियों के संयोजन के अतिरिक्त उनके मन के संतुलन को विचलित करने में सक्षम अन्य शक्तियां भी सबल थीं। उनके द्वारा सामान्यतया सुरक्षित प्रकाश विकिरण के विरुद्ध अभेद्य शक्तिपुंजों द्वारा असामान्य प्रतिरोध था, संभवतः इस कारण कि यह बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका अंतिम प्रयास था। अतः अशुभ शक्तियों का सर्वोच्च नियंत्रक मार इस दृश्य के पीछे था। यहाँ ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि मार उस देवलोक में है जहाँ दूसरों की रचनाओं में आनंद लिया जाता है। उसको यह गलत धारणा है कि सभी अनुबंधित वस्तुएं उसी की हैं। तथापि बोधिसत्व ने शनैः शनैः किंतु निश्चित रूप से प्रगति की और इसमें उनके पुण्यों के मानसिक बलों से सहायता प्राप्त हुई, जिन्हें सही समय पर अनिवार्य रूप से सहायक होना ही था। उन्होंने एक प्रण लिया तथा अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष में हाथ बटाने हेतु उन सभी देवताओं एवं ब्रह्माओं का आह्वान किया जिन्होंने उनको 10 महान पारमिताओं की पूर्ति करते देखा था। आपने देखा होगा कि बर्मा की बुद्ध की प्रतिमाओं में बुद्ध एक हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते दिखाई देते हैं। पारमिताओं की आपूर्ति के लिए किए गए उनके सभी पिछले कर्मों के साक्षी के रूप में पृथ्वी को आमंत्रित करने का यह एक प्रतीक है। ऐसा करने से ब्रह्माओं तथा देवताओं की विशुद्ध एवं उत्कृष्ट मानसिक शक्तियों के संयोजन का प्रभाव अच्छा पड़ा। कुछ समय के लिए अभेद्य लग रहे सबल शक्तिपुंज विघटित होने लगे तथा मन पर नियंत्रण में निरंतर सुधार के साथ उनका सदैव के लिए उन्मूलन हो गया। सभी निवरण अभिभूत हो गए। तत्पश्चात वे अपनी चित्त एकाग्रता की शक्ति का संवर्धन करने में सक्षम तथा अपने चित्त को संपूर्ण पवित्रता शांति एवं समभाव की स्थिति में ले जाने में सफल हुए। धीरे धीरे उनकी चेतना सच्ची अंतर्दृष्टि से अभिभूत हो गई। एक प्रेरणा स्वरूप उनकी चेतना में उनकी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान प्रकट हुए। अंतर्मुखी साधना के माध्यम से स्वयं के भीतर की वास्तविकताओं की प्रकृति का अध्ययन करने पर उन्हें स्पष्ट हुआ कि मानव शरीर में कोई सार नहीं है जैसा कि प्रतीत होता है। यह एक असंख्य कोटि कलापों के संयोजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कलाप, जिनको हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, अस्तित्व की न्यूनतम इकाई है और अधिक विस्तार से अध्ययन करने पर उन्हें पता चला कि ये कलाप भी निरंतर परिवर्तनशील या प्रवाहमय है। यही बात मानस के विषय में भी सत्य है। मन तो बहिर्गामी मानसिक शक्तियों, सृजनात्मक शक्तियों तथा अंतर्गामी शक्तियों अर्थात भवचक्र के असंख्य जन्मों में किसी व्यक्ति की प्रणाली में निरंतर प्रवेश करती हुई सृजित शक्तियों का प्रतीक मात्र है। तो बुद्ध ने घोषित किया कि उनमें प्रज्ञा चक्षु का उदय तब हुआ जब उन्होंने अहं की सारतत्व संबंधी मिथ्या दृष्टि को दूर किया, क्योंकि उन्होंने कलापों को एकाग्रता अर्थात समाधि सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्हें नश्वरता अर्थात अनित्यता के विधान से सत्वहीन तुच्छ या मात्र व्यवहार के रूप में पाया। बौद्ध धर्म में जिसे हम पय्यति कहते हैं अर्थात अवधारणा विचार या पदवीकरण, उसका उन्होंने परित्याग कर लिया। जब उन्होंने इस अवधारणा प्रक्रिया या पदवीकरण का परित्याग कर दिया तब उन्होंने सत्य की स्थिति परमार्थ पाली में परमत अर्थात शक्तियों के स्वभाव के सत्य या परम सत्य को प्राप्त किया। स्वयं के भीतर सतत मानसिक एवं भौतिक परिवर्तन अर्थात अनित्यता पाली में अनिच्च का अनुभव करते हुए उन्होंने अगली कड़ी दुख के सत्य को आत्मसात किया। तत्पश्चात उनका अहम भाव विघटित हो गया, शून्य ही शेष रहा तथा वे दुख से परे के पद दुख निरोध में पहुंचे, जहां आत्म या स्वयं से किसी प्रकार के लगाव का भाव शेष नहीं बचता। उनके लिए मानस एवं भौतिकता निरंतर आवर्ती तथा प्रतीत्य समुत्पाद या कारण कार्य विधान के अंतर्गत शून्य प्रक्रियाएं मात्र थी। सत्य का साक्षात्कार हो गया, भ्रूण बुद्ध के अंतर्निहित गुण तब विकसित हुए तथा वैशाख पूर्णिमा दिवस के उषा काल में उन्हें पूर्ण जागृति प्राप्त हुई। सिद्धार्थ ने सही अर्थ में पूर्ण जागृति या सम्यक संबोधि प्राप्त कर ली तथा एक जागृत एक प्रबुद्ध एक सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। वे ऐसे जागृत थे जिसकी तुलना में अन्य सभी मनुष्य नींद में थे तथा स्वप्न देख रहे थे। वे ऐसे प्रबुद्ध थे जिनकी तुलना में अन्य सभी मनुष्य अंधेरे में भटक एवं टटोल रहे थे। वे ऐसे ज्ञान के साथ सब कुछ जानते थे जिसकी तुलना में अन्य सभी मनुष्यों का ज्ञान अज्ञानता मात्र था। हमने बुद्ध की जीवनी का यह विवरण सयाजी उबाखी की पुस्तिका बौद्ध धर्म क्या है से लिया है। बुद्धत्व के महत्व को तथा बुद्धत्व प्राप्त करने में कठिनाइयों को समझाने में सहायता के लिए इसके पहले उन्होंने बौद्ध अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड का विवरण दिया है। चूंकि हमने इन प्रवचनों में बहुधा अस्तित्व की 31 भूमियों या लोकों का उल्लेख किया है, आइए हम थोड़ी और सूक्ष्मता से उन पर दृष्टिपात करते हैं। अस्तित्व के 31 लोक। सयाजी उबाखी ने स्पष्ट किया कि तीन सृष्टियां या लोक हैं जो आपस में गुथे हुए एवं एक दूसरे में व्याप्त हैं। वे हैं अवकाश लोक पाली में ओकाश लोक, संस्कार लोक पाली में संखार लोक तथा सत्वलोक पाली में सत्तालोक। लौकिक संसार अवकाश लोक में समाहित है। मानसिक शक्तियों का उत्पाद जो दृश्य या अदृश्य प्राणियों का क्षेत्र है वह संवेदनशील प्राणियों की सृष्टि अर्थात सत्वलोक है। बदले में ये मानसिक शक्तियां संस्कार लोक में रचित या सृजनात्मक होती हैं। मानस एवं पदार्थ नाम रूप कार्यकारण विधान के प्रभाव में होते हैं। इन तीन सृष्टियों या लोकों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस तीन में एक ब्रह्मांड के भीतर कोटि कोटि विश्व व्यवस्थाएं या चक्रवाल पाली में चक्रवाल हैं, उनकी गणना असंभव है। हम इनमें से केवल एक विश्व व्यवस्था या विश्व प्रणाली में रहते हैं। हमारी निकटतम 10,000 विश्व प्रणालियां जाति क्षेत्र पाली में जाति क्षेत्र कहलाती हैं, क्योंकि वे किसी बुद्ध की उत्पत्ति का क्षेत्र हैं। जब बुद्ध ने कपिलवस्तु के निकटवर्ती वन में महासमय नाम का प्रवचन दिया था तो उस सभा में हमारी अपनी विश्व प्रणाली के ब्रह्माओं एवं देवताओं के अतिरिक्त उन सभी 10,000 विश्व प्रणालियों के ब्रह्मा एवं देवता भी विद्यमान थे। भगवान बुद्ध इतने अत्यधिक विकसित हैं कि वे अपनी असीम मेत्ता एवं करुणा से युक्त विचार तरंगों को अरबों विश्व प्रणालियों के प्राणियों को भेज सकते हैं, क्योंकि वे उनके प्रभाव के क्षेत्र अन्याखेत के अंतर्गत हैं। शेष असंख्य विश्व प्रणालियां जो बुद्ध के प्रभावी विचार तरंगों की पहुंच से बाहर हैं वे अनंत अंतरिक्ष विषय क्षेत्र कहे जाते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारे विश्व की तुच्छता भयावह मात्र है। समूचा मानव लोक इस ब्रह्मांड में एक कण मात्र है। आइए अब हम अपनी विश्व व्यवस्था या चक्रवाल में अस्तित्व की 31 भूमियों या लोकों की बात करते हैं। निसंदेह अन्य सभी विश्व प्रणालियों में भी वैसे ही हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। उच्चतम श्रेणी में ब्रह्माओं के अरूप लोक हैं। उसके नीचे सूक्ष्म भौतिकी वाले ब्रह्माओं के रूप लोक तथा सबसे नीचे कामावचर लोक, जिनमें देवलोक, मनुष्य लोक तथा निम्न लोक समाहित हैं। ब्रह्माओं के 4 अरूप लोक हैं तथा इन लोकों के प्राणी निम्न लोकों के प्राणियों के संपर्क में नहीं आ सकते। इसी कारण जब साधु शिक्षक असित को पता चला कि वे बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुन सकेंगे क्योंकि उनकी गति इन्हीं लोकों की है, तो वे चिंतित हो गए। उन लोकों में वे सर्वोत्तम चित्त एकाग्रता में होंगे, किंतु वे जन्म एवं मृत्यु के चक्र से परे जाने का अवसर नहीं पा सकेंगे। सूक्ष्म भौतिकी ब्रह्माओं की 16 भूमियां अर्थात रूप लोक हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म लेने वाले ब्रह्मा इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं कि वे स्वयं को अमर समझते हैं तथा जब वे चाहते हैं कि उनके लोक में अन्य प्राणी भी हों, तो तत्क्षण अन्य ब्रह्मा वहीं पुनर्जन्म लेते हैं। अतः वे स्वयं को सृजनकर्ता समझते हैं। इन ब्रह्मलोकों में समाधियों के माध्यम से पहुंचा जाता है, जैसे कि ये अंतरिक्ष में हों। इन अकामावचर लोकों में कामुकता या अशुद्धता का कोई दोष नहीं होता। ऐसा कहें कि ये दीप्तिमान होते हैं। वहाँ कोई भी प्राणी एक परिपूर्ण अतीन्द्रिय शांति का आनंद प्राप्त करता है। अतः जब हम अपने चित्त को शुद्धता की आदर्श स्थिति तक विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने चित्त को प्रथम ध्यान की प्रकृति के अनुरूप लाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि कम से कम अधो गतियों के निम्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कामावचर लोकों के ऊर्ध्व चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलें। ब्रह्मलोकों के नीचे सभी प्राणी कामावचर लोकों में हैं। 6 देवलोकों में दिव्य प्राणी रहते हैं जो वासनाओं का सर्वोत्तम आनंद लेते हैं। व्यक्ति एक नैतिक जीवन जीने तथा पुण्य कार्य करने के माध्यम से इन लोकों में जाता है। वहाँ जीवन का आनंद लेते लेते जब पुण्य कर्मों का अवशेष समाप्त हो जाता है तथा जीवन की अवधि का अंत, तो पुनर्जन्म किसी भी लोक में हो सकता है। हम देवलोकों तथा अधोलोकों के बीच में मनुष्य लोक में रहते हैं। 4 अधोलोक हैं। भूमिगत दानवों का असुर लोक, भूतों का प्रेतलोक पाली में पेतलोक, जानवरों का तिरिच्छल लोक तथा नारकीय नीरय लोक। मानस से उत्पन्न मानसिक शक्तियों के एवं विचार, शब्द तथा कृत्य रूपी संस्कारों के चरित्र पर निर्भर करते हुए ये सभी 31 लोक शुद्ध या अशुद्ध, शीत या उष्ण, उज्ज्वल या अंधकार पूर्ण, हल्के या भारी, सुखद या अति दुखद होते हैं। इस बात के आधार पर कि हमारे द्वारा उत्पन्न मानसिक शक्तियां कुशल हैं या अकुशल, वे इन लोकों में स्थापित हो जाती हैं, जैसे कि हमारे भविष्य के लिए एक स्थान आरक्षित किया जा रहा हो। यदि हम अपने वर्तमान स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, यदि हमें जैसा प्रयास करना चाहिए हम वैसा करते हैं, आवश्यक पृष्ठभूमि में है तथा इस एक में 3 विश्व प्रणाली को भेद कर निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई भी अच्छी या बुरी मानसिक शक्ति हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधने में सक्षम नहीं हो सकेगी। आज सायं बस इतना ही। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।